ओम अग्नियान चिरांधस्य ज्ञानांजन शलाक्य चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। सातवें अध्याय की शुरुआत में भगवान ने स्वयं ही बोलना आरंभ किया था कि किस भाव से तुम अपना मन मुझ में आसक्त कर सकते हो, उसका तरीका मैं तुम्हें समझाता हूँ। और उसको तुम सुनो, तत् सुनो और तत्पश्चात भगवान ने अपनी शक्तियों के विषय में बताया, बहिरंग शक्ति और अंतरंग शक्ति, जिसमें पांच स्थूल तत्व, तीन सूक्ष्म तत्व, सब मिला करके आठ तत्व मिलकर के बहिरंग शक्ति भगवान की होती है। और आत्मा को भगवान ने परा प्रकृति के रूप में प्रस्तुत बताया कि वो परा प्रकृति है जो प्रकृति बहिरंग शक्ति के संपर्क में आकर के उसका शोषण करने का प्रयास करती है। तो उसके बाद भगवान ने बताया कि ये दोनों शक्ति मैंने बनाई, दोनों शक्ति है तो मेरी, लेकिन वास्तव में मैं इन शक्तियों को बनाने वाला हूं और इस शक्तियों का प्रभाव मुझ पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुझसे पर संसार में कोई वस्तु है ही नहीं। मतलब फलधर्म नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। और जिस तरह से धागे में मोती परोए होते हैं, उस तरह से सारा संसार मुझ में परोए, अर्थात सबको धारण करने वाला मैं हूं। मेरे कारण ही सारा सृष्टि का नियम अनुसार आवागमन और संचालन होता है। फिर भगवान ने बताया कि मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूं जिससे तुम इस तत्व को समझ सकते हो कि किस तरह से सारी सृष्टि मेरे कारण कार्यरत है। अगर तुम चाहते हो देखना कि हर एक वस्तुओं का जो बीज है वो मुझसे प्रकट होता है, जिस तरह से पानी में स्वाद मैं हूं, सूर्य चंद्र की जो प्रकाश है वो मैं हूं, फिर इस तरह से अग्नि भगवान ने कहा, इस तरह से कई अलग अलग उपाय बताए जिस तरह से एक साधारण व्यक्ति भी भगवान को देख सकता है। भगवान को देखने के लिए, भगवान को अनुभव करने के लिए, भगवान में श्रद्धा रखने के लिए आपको कोई वेद वेदांती या पंडित बनने की आवश्यकता भी नहीं है। और एक साधारण व्यक्ति भी ये समझ सकता है कि पानी में स्वाद मैं हूं, इतना आसान है। जो अग्नि जिससे तुम कुकिंग करते हो, वही अग्नि आपको पेट में भी चाहिए, जो भी भगवान कहते हैं मैं हूं। तो इस तरह से एक साधारण व्यक्ति को भगवान का महिमा समझाने के लिए ये बड़ा आसान तरीका है। आप बता सकते हो किस तरह से भगवान सब जगह विद्यमान है। तत्पश्चात भगवान ने संक्षिप्त में बताया कि जीव जो है वो क्यों मोहित होते हैं, क्योंकि उनके मोहित होने के पीछे उनके शरीर और आत्मा का ज्ञान, ये उनका मूल कारण होता है जिसके कारण वो मोहित होते हैं। और विशेष करके प्रकृति के तीन गुण जो इनको संचालन करते हैं, जो इनको कंट्रोल में रखते हैं, इसके कारण ये तीन गुणों के प्रभाव से ये लोग मोहित होते हैं। तो क्या ये तीन गुणों से जो प्रभाव से मोहित होने वाले लोग हैं, उनका उद्धार का कोई गुंजाइश नहीं है क्या? उन लोग का उद्धार हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो भगवान ने कहा अवश्य हो सकता है। कैसे हो सकता है? पहले तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो शुरुआत में तो भगवान ऐसे बोलते हैं कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य अर्जुन, ये तो पार करना असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। तीन गुणों से कोई मुक्त हो ही नहीं सकता, बड़ा दुर्गम है, बड़ा असंभव है, बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है। तो फिर पहली लाइन से तो कोई आश्चर्य हो जाए, अरे इतना मुश्किल है तो फिर हम क्यों परिश्रम करें, संभव कैसे है ये। तो फिर भगवान कहा कि एक रास्ता है, अगर तुम पार करना चाहते हो तो क्या रास्ता है, मेरी शरण में आ जाओ। और मेरे अकेले की शरण में, और किसी की शरण में भी नहीं, ऐसा नहीं कि आप किसी की भी शरण में जा सकते हो। आप सोचते हो कि मैं शिव जी की भी उपासना करके तीन गुणों से मुक्त हो सकता हूं, तो वो नहीं हो पाएगा। आप सोचते हो कि मैं जय गणेश जय गणेश जय गणेश सेवा करूंगा तो भी यू नो मैं तीन गुणों से मुक्त हो जाऊंगा। ये संभव नहीं है। तो तीन गुणों से मुक्त होने के लिए अगर कोई व्यक्ति शरणागत होता है तो उसके लिए भगवान कैसे क्या उपाय देते हैं, जिस तरह से हमने एक एग्जांपल लिया था कि समाश्रिता ये पदपल्लव प्लवम महत्पुण्य यशो मुरारी समाश्रिता ये पदपल्लव प्लवम, ये महान सागर जो है भव सागर एक बड़ी समुन्द्र की भांति है भव सागर, जिसमें भगवान श्री हरि के चरण एक ऐसी नौका के समान है जिसका शरण लेने से आप इस सागर को एक सेकंड में पार कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो सागर जो है वो गाय के बछड़े की पांव की जो खुरी होती है उसके जितना छोटा बन जाता है, तो इसको तुम पार कर सकते हो, इस सागर को इस तरह से आसानी से पार कर सकते हो, और फिर तुम्हें इधर वापस नहीं आना पड़ता इस संसार में, इस भौतिक जगत में, जहां पर हर कदम पर प्रॉब्लम है, हर कदम पर पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, हर कदम पर यहां पर प्रॉब्लम है। यहां भौतिक संसार में आप हर एक पद पर समस्या, हर एक स्टेप में प्रॉब्लम का कोई स्टॉप कोई है ही नहीं। कोई व्यक्ति आपको मन से दुखी करता है, कोई शरीर से आप दुखी होते हो, बड़ी मुश्किल से आपने सुख देखने का प्रयास किया, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको पेट पे, किसी के पास पैसा आ गया तो उसको डॉक्टर ने बोला कि तुमसे आज से तुम स्वीट खाना बंद करना पड़ेगा, तुम्हें डायबिटीज होगी तो इस तरह से आपको मन से, और आपको काफी अच्छा अवसर प्राप्त हुआ, शरीर से स्वस्थ होने लगे तो आपको और किसी ने आकर कुछ बोल दिया, इस तरह से जो प्रॉब्लम्स का कोई कोई उसका उपाय नहीं है इस संसार में। पदम पदम ये तो विपदा अनादि कर्म फले पड़ी भवार न वजले, अनादि कर्म से हम इस भव सागर में गिरे हैं, तरी वारे नादेखी उपाय, और इसको तैरने का कोई उपाय ही नहीं है, तरी वारे नादेखी उपाय। कल मैं गा रहा था ये विषय हला हले दिबा निशी हिया जले, ये विषय रूपी हलाहल में, हलाहल का अर्थ होता है विष जहर, इस जहर के कारण, कौन सा जहर, इंद्रिय भोग, इस जहर के कारण दिबा निशी हिया जले, मेरा हृदय जो है वो दिन रात जलता है, दिबा निशी हिया जले, और मन कभी सुख नहीं पाए, और मेरे मन में किसी प्रकार का सुख नहीं आता। फिर आगे बहुत सुंदर भजन है, भक्ति ठाकुर आगे कहते हैं, लेकिन आगे कहते हैं कि आशा पास सत सत अक्लेश दे अविरत, अनेक 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 हमारी इच्छाएं है जिसके कारण हमें कष्ट होता रहता है, बहुत सारी इच्छाएं है हमारी, ये कष्ट अविरत नॉन स्टॉप पदम पदम यद विपदम अविरत क्लेश दे अविरत, निरंतर कष्ट देता रहता है, प्रवृत्ति रूम रहता है खेला। फिर कहते हैं काम क्रोध आदि छोड़े बाट पाड़े देव भय, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य जितने भी ये है ये हमें डराते रहते हैं बार बार, हाईवे रॉबर्स की तरह। धमकाते रहते। और इसके ऊपर भी आगे भगवान भक्तिवंत ठाकुर गाते हैं कि ज्ञान कर्म ठग दुई मोरे प्रतारियालय, ज्ञान और कर्म ये दोनों मुझे ठग रहे, ठग चीटर्स ठग रहे। कई बार हम सोचते कि हम तो थोड़ी प्रभु ज्ञानी कर्मी है, हमें क्या लेना देना ज्ञान और कर्म से, लेकिन हमारा भी कनेक्शन है ज्ञान और कर्म से। क्यों? क्योंकि कर्म तभी आता है जब हमारी भौतिक इच्छा होती है, तो भौतिक इच्छा जब तक समाप्त तो नहीं होती तब तक हम ज्ञान और कर्म में परेशान रहते। ज्ञान कर्म ठग दुई चीटर्स है ये लोग, धोखा दे रहे हैं हमें। ज्ञान कर्म ठग मोरे प्रतारियालय फेले अवश्य से फेले सिंधु जले, इसके कारण मैं इस भव सागर में गिर गया, ये रीजन था इसमें मैं गिरा भव सागर में। अब यहां से निकलने का तो कोई मार्ग है ही नहीं, तो ये है ना समय बंधु हे कृष्ण, हे मेरे बंधु मेरे मित्र मेरे भाई, तुम ही कृष्ण कृपा सिंधु, आप कृपा के सागर हो, कृपा करी तोलो मोरे बले, आप कृपा करके मुझे, मेरी इच्छा तो नहीं है इसमें से निकलने की, लेकिन बल पूर्वक खींच लो इसमें से बाहर, कृपा करी तोलो मोरे बले। बड़ा सुंदर आगे भक्तिवंत ठाकुर लिख रहे हैं फिर कि ठीक है, मैं कल बता रहा था कि जब भगवान आपको तुला बाहर निकाल लेते हैं तो फिर भगवान प्रार्थना है आपको, क्या भगवान प्रार्थना करते चाहते हो, क्या प्रार्थना करना चाहते हो, तो भगवान कहेंगे कि आपको क्या ऊपर मेरा सखा बनना है, गोपी बनना है, यशोदा के घर पे जन्म लेना है, क्या करना है तुम्हें वृंदावन में, कल्पवृक्ष बनना है, ना 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 ये सब नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, पाद पद्म धूलि करी पतित किंकर धरी, मैं तो आपका पतित दास हूं ये मान करके पाद पद्म धूलि, आपके चरण में एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल, एक पार्टिकल छोटा सा वो बनाइए बस, और कुछ नहीं, यह भक्ति विलास है और कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं बहुत कुछ मांग सकते हो तो मांगो, मैं तो कृष्ण हूं, मैं तो जो चाहो दे सकता हूँ, तो मांगो, तुम्हें जो चाहिए थे मांगो, भगवान नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए पाद पद्म धूलि करी। लेकिन देखो धूलि का तो कैसा होता है कि तो पाँव मैं धो देता हूँ तो निकल जाता है, वो तो धूलि तो ऐसी होती है ना, वो तो हाथ लगा तो निकल जाएगा, तो नहीं नहीं फिर भी मुझे तो धूलि बनना है। देखो भक्ति दास आमित सर नित्य दास, मैं तो आपका नित्य दास हूँ, किंतु माया के कारण मैं भूल गया कि मैं तुम्हारा दास हूँ, बाकी मैं तुम्हारा दास हूँ यही मेरी वास्तविक स्थिति है, इसलिए मैं बद्ध हूँ दुखी हूँ, इसलिए आपके चरण में आया हूँ शरण लेने के लिए। ये स्तुति भक्तिवंत ठाकुर ने गाई है। तो जब भी हम भगवान के शरण लेते तो फिर जो मायापति है, जिसके जो माया के स्वामी है, वो केवल एक इशारा ही कर देंगे कि इस भक्त को परेशान मत करना, तो फिर स्वाभाविक है माया क्यों परेशान करेगी आपको, वो जो स्वामी है वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान देखते हैं शरणागत हो रहा है, इच्छा है उसकी मेरे पास आने की, असमर्थ है, उसके पास इतना शक्ति नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आ पाएगा, असमर्थ है, लेकिन इसकी इच्छा है तो मैं उसकी इच्छा का मान रखूंगा और उसको सहायता करूंगा। तो फिर इतना सरल उपाय भगवान दे रहे हैं फिर भी क्यों नहीं आते जीव? तो चार प्रकार के लोग आते हैं और चार प्रकार के लोग शरण में नहीं आते, जिससे आज हम चर्चा शुरू करने वाले हैं, और हमारा उद्देश्य है 7 चैप्टर आज पूरा करना। अगर हमारे पास अगर 2 भक्त और होते तो वी कैन हैव लिटिल ड्रामा ऑल्सो, बट लेट्स सी वी कैन ट्राई। तो पहले हम 4 प्रकार के लोग जो नहीं आते मेरे शरण में भगवान कहते हैं उनके विषय में बात करते हैं। पढ़िए
भौतिक प्रकृति ना 3 गुणों ने बनेली मरिया देवी माया ने जीत ली।
जो निपट मूर्ख है जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते।
हाँ, चार प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते, स्पष्ट रूप से भगवान यहाँ पर कहते हैं। एक तो है वो कि जो मूड है, नमाम दुष्कृति न, चार दुष्कृति न है और चार सुकृति न है। तो दुष्कृति न में से चार कौन से है? नमाम दुष्कृति न, एक है मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, दूसरा है नराधमा माया अपरतक ज्ञाना, ये तीसरा है, और आसुरिम भाव आश्रिता, ये चौथा। चार प्रकार के लोग मेरे शरण में नहीं आते। तो ऐसे लोग तो आपको हर जगह मिलते हैं। इन चारों को प्रभुपाद ने बहुत सुंदर रूप से तात्पर्य में डिस्क्राइब किया है, जिसको हम इतना डिटेल में तो आप घर पे पढ़ लेना, लेकिन प्रभुपाद ने मूड शब्द का उपयोग उन लोग के लिए किया है जो लोग दिन रात गधे की तरह काम करते रहते हैं, वर्कहॉलिक। एक हमारे एक भक्त है कृष्ण नाम प्रभु, जब वो बहुत पहले जॉब करते थे कहीं पर, तो मुझे बताते थे कि वो उनका कोई मित्र है, उसको ऑफिस से धक्के मार के निकालना पड़ता था, जा घर अब। ऑफिस से जाता ही नहीं था वो, उसको पसंद ही नहीं था। फिर पूछा भी क्या झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या घर में, क्या प्रॉब्लम है कुछ, क्यों नहीं जाना चाहता? बोले कुछ भी कोई प्रॉब्लम है, बोले दिन में 10 बार फोन करता हूँ घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वर्कहॉलिक, काम बस काम करते रहो, वर्कहॉलिक। यस,
मैं ऐसे ही मुझे ऐसा लगता था कि मुझे काम बहुत अच्छा लगता
था। बट लेकिन जनरली जो काम करते हैं मूढ़ा, मूड शब्द किसको बोलते हैं कि जिसको बुद्धि नहीं होती है उसको मूड बोलते हैं, मूर्ख, निपट मूर्ख लिखा है ना इसमें,
yes.
हिंदी में इस मूड, प्रभात गधा को भी बोलते हैं मूड, मूड मूड का परफेक्ट मैच होता है गधा, यू नो गधा, गधे के विषय मैंने आपको एक बार ऑलरेडी बता चुके हैं, पहले एक बार मतलब आपको यह स्मरण होगा, गधा बहुत काम करता है और उसको घास खाने के लिए, उसको घास खाने के लिए थोड़ा घास खाता है बस, फिर भी इतना मेहनत करता है, और समर के सीजन में गधा पतला हो जाता है ना, समर में नहीं मानसून में पतला हो जाता है और समर में तगड़ा हो जाता है। हालांकि हमने आजकल तो आप गधे देखते भी नहीं हो आसपास में, और हम ऐसे कोई गधे के विशेषज्ञ भी नहीं है, लेकिन गधा मानसून में इसलिए कमजोर हो जाता है क्योंकि वहां पर हरी घरी घास जो होती है, हरी भरी घास, वो उसके आसपास में आ जाती है, सब जगह इतनी घास उग जाती है, सब जगह आसपास में घास आ जाती है, तो वो सोचने लगता है कि आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया और मुझे मुफ्त में खाना पड़ेगा, और वो खाता रहता है, और इसलिए वो बेचारा वीक हो जाता है डिप्रेशन में। और समर में घास दूर दूर तक जाना पड़ता है, घास मिलती नहीं है, तो दूर दूर तक पैदल चल के जाता है, तब जाके घास मिलती है, तो सोचता है आज मैंने कितना काम किया, तब जाके घास मिलती है, तगड़ा हो जाता है। इस तरह का गधा इस तरह का मूड होता है, और एक्चुअली होता है ऐसे लोग, आपने शायद वो सुना होगा, वो एक बार एक सेठ जा रहे थे किसी सड़क पर से रात के समय पे, और वहां पर जो लुटेरे आते रात को कभी हाईवे पे, अभी तो आजकल तो कम हो गया, लेकिन लुटेरे आते थे रात को, तो चार डाकू आए उसको, और आकर के उसको बोला छुरी निकाल कर, अरे जितना सामान तेरे हाथ में है तेरे पास है सब सब दे दे, है ना। तो वो देखकर पहले तो घबरा गया चार लोगों को देख करके, और फिर बोला देखो तुम चाकू नहीं लगाना, कुछ करना मत मुझे, मेरे पास जो कुछ भी है मैं तुम्हें सब दे देता हूँ, सब धन नेकलेस घड़ी पर्स वॉलेट जो कुछ भी है सब दे देता हूँ, सब तुम रख लो, मेरे पास सामान है वो भी ले लो, सब ले लो, लेकिन मारना मत, चाकू वाकू नहीं मारना, मारना मत मुझे। सब कुछ दे दिया, हंसने लगे चौड़ा देखो कैसा आ गया, सब कुछ दे दिया, सबको दे दिया, सब सब पैक कर लिया, सब ले लिया। फिर जो मेन चोर में से जो एक था मेन था, उसने दो झपट लगा दिए उसको, दो झपट मार दिया। बोले मैंने कहा तो मैं सब तो दे दिया, आप क्यों मार रहे हो? बोले हम मुफ्त की कमाई नहीं खाते। कुछ परिश्रम करके खाएंगे। तो ये गधे होते हैं, ये मूड इस तरह के होते हैं। वो कितना भी मेहनत करते जाओ वो लोग थकते नहीं। आई मीन दे वॉन्ट टू वर्क लाइक, कई बार हम प्रभुपाद यूज्ड टू से कि सायंकाल होता है, जैसे अभी 6:30 हो जाता है, तो वो सारे पक्षी दिन से रिटायर्ड हो जाते हैं, दे आर रिटायर्ड फ्रॉम द डे, और वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं, दे स्पेंड टाइम विद द फैमिली, स्विच ऑफ देयर मोबाइल्स यू नो, एंड दे जस्ट स्पेंड टाइम विद देम एंड दे स्लीप अर्ली, वेरी पीसफुल लाइफ। और सुबह जैसे उजाला होता है, उजाला होने से कुछ समय पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही सब लोग उठ जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। आज भी कलयुग में भी ऐसा होता है, लेकिन प्रभुपाद से दैट दे नो दैट व्हाट इज टू बी डन, बट ह्यूमन इतने बुद्धिशाली है कि वो लोग वर्क डे नाइट ड्यूटी सब करते रहते हैं, डे ड्यूटी नाइट ड्यूटी, जस्ट वर्क लाइक एनीथिंग। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी कहते हैं, ये प्रभुपाद ने इस तरह से मूढ़ा को बताया, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी कहते हैं कि जो भगवान की दिव्य कथाओं को सुनने के लिए जो लालायित नहीं होता, और इसको छोड़ करके दुनिया की फालतू चीजों को सुनने के लिए वो आकर्षित होता है, और इसलिए वो लोग कुत्ते के मल को खाने वाले जैसे है। कुत्ता जो होता है उसका जो स्टूल होता है उसको खाने के बराबर है, उनके जैसे होते ये लोग। और बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जो लोग माया से बहुत ज्यादा मोहित हो चुके हैं, और ये लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं विष्णु मैं कर्म के अधीन हूं, वो ऐसा सोचते हैं। तो ऐसे तो प्रभुपाद ने बताया, वही हमें सब ध्यान में रखना है, लेकिन ये आचार्यों ने इस तरह से अपने अपने अलग अलग ओपिनियन दिए। प्रभुपाद क्या करते थे, सभी आचार्यों की टीका अपने सामने रखते थे, जब भगवद गीता का तात्पर्य लिखते थे तो उसमें से सबका एसेंस इकट्ठा करके फिर हमारे लिए प्रस्तुत किया इसने। फिर दूसरा होता है नराधम। नराधम व्यक्ति वो माना जाता है कि जो मनुष्य में सबसे अधम होता है, नर अधम सबसे अधम होता है। श्रीमद् भागवत में कहा है कि जो वेद शास्त्र को नहीं मानता, जो लोग वेद के विपरीत जाते हैं, शास्त्र के विपरीत जाते हैं, उसको नराधम बोलते हैं। विशेष करके एक सेक्ट है कि जो ये उनके महारत अरहद नाम के जो राजा थे, उनसे बाद में फॉलोअर होते हैं। गुजरात में तो बहुत सारे उनके टेंपल्स और बहुत सारी चीजें हैं। वो लोग बाल जो होते हैं वो काटते नहीं, वो खींच के निकाल देते हैं। और शास्त्र में कहा है 3 बार स्नान करो, तो वो लोग स्नान नहीं करते। सो इस प्रकार के सेक्ट को प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम कहता है ये लोग नराधम है, दे आर नराधमास। बट यहां पर प्रभुपाद ने नराधम शब्द का उपयोग किया है उन लोगों के लिए कि जो लोग सो कॉल्ड सिविलाइज्ड है। सो कॉल्ड सिविलाइज का अर्थ होता है कि अपने आप को सज्जन व्यक्ति बताना चाहते हैं, लेकिन जो इस मनुष्य जन्म का सदुपयोग करने के बदले, अपनी चेतना को उजागर करने के बदले केवल इंद्रिय भोग में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, वो मनुष्य होने के लायक नहीं है, तो इसलिए उसको नराधम बोला गया है। और नराधम को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नराधम को ऐसे भी बताते हैं कि जो लोग कुछ समय के लिए कृष्ण भक्ति को स्वीकार करते हैं और बाद में छोड़ देते हैं भक्ति को, तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो अधम माने जाते हैं, पतित, अधम पड़ुआ बोलते हैं, ये तो इसको नदादम बोलते हैं। बल्ले विद्याभूषण भी इसी प्रकार का बताते हैं कि हाई क्लास ब्राह्मण का शरीर मिलने के बाद भी जो कोई निम्न म्लेच्छ का काम करता है तो उसको नदादम बोला जाता है। फिर तीसरा है माया अपरत ज्ञान, माया से जिसका ज्ञान हरा हुआ है, माया ने जिसका ज्ञान हर लिया है, तो माया से जिसका ज्ञान हरा है तो ऐसे जनरली जो लोग होते हैं ये बड़े बड़े फिलोसोफर्स साइंटिस्ट जिनका माया से ज्ञान, एक्चुअली विद्वान लोग होते हैं दिखने में तो, लेकिन माया ने इनका ज्ञान हर लिया है, तो ऐसे लोग बड़े बड़े कवि वैज्ञानिक तत्वदर्शी ऐसे लोग होते हैं, बड़े बड़े पीएचडी का फुल फॉर्म क्या बोलते हैं हम लोग,
डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी,
दूसरा भी है ना कोई पीएचडी का, परमानेंटली हेड डैमेज ऐसा कुछ बोलते क्या बोलते और दूसरा भी एक परमानेंटली हियरिंग डिसऑर्डर वो सुन नहीं पाते ये सारे लोग माया अपरत ज्ञान है। यस यू वांटेड टू आस्क,
जो लोग देवताओं की शरण में जाते हैं तो मतलब भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर रहे हैं, पूरी लाइफ देवताओं को डेडिकेट किया है, तो ये कैटेगरी में फॉलो
ना, उसका कैटेगरी इसके बाद आता है, भगवान इसके बाद वो कैटेगरी बताते हैं। चार प्रकार के लोग आते हैं, चार प्रकार के लोग नहीं आते, फिर देवताओं के शरणागत वाले, ये चार चार आठ और दो दस और ग्यारह कैटेगरी है टोटल इसमें, इसी चैप्टर में आता है वो, आने वाले पांच श्लोकों में आएगा, ग्यारह अलग अलग प्रकार के लोगों की चर्चा हो रही है। तो ये है माया अपरत ज्ञान, बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माया अपरत ज्ञान का एक दूसरा अर्थ भी बताते हैं। माया अपरत ज्ञान वो है कि जो कृष्ण और राम को साधारण मनुष्य मान करके विष्णु को भगवान मानते हैं और विष्णु को एकमात्र भगवान के रूप में मानते हैं, उसको माया अपरत ज्ञान बोलते हैं। अर्थात जो लोग विष्णु के सामने कृष्ण और राम को एक साधारण मनुष्य मान लेते हैं, तो इस प्रकार के लोग भी माया अपरत ज्ञान है। फिर
जो ये मानता हूँ कि कृष्ण भगवान जो है वो विष्णु जी के अंश है,
नहीं वो सही नहीं है, लेकिन उसमें इतना दोष नहीं है, वो सही तो नहीं है 100%, लेकिन फिर भी व्यक्ति एक ही है, विष्णु और कृष्ण, विष्णु स्वरूप है दोनों, लेकिन फर्क यही है कि कृष्ण मूल है, बाकी ये सब तो बाद में, विष्णु तो सब बाद में प्रकट होते हैं, उस दिन हमने चर्चा किया था ना, वो सारे अंश विस्तार है, तो कृष्ण मूल है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि जिन लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए जनरली इस बात को पब्लिक में ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे ओपिनियन डिफरेंस आएंगे और वो वास्तव में विष्णु की भक्ति कर भी रहा था फिर भी नहीं करेगा बाद में, इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि अगर वो कहता है कि मैं विष्णु की नारायण की सेवा करता हूँ तो उसको अप्रिशिएट करो, यस यू आर राइट ऑन द राइट पाथ, एनी वे ही इज राइट पाथ, एवरी सेम थिंग, यस।
ये ऐसे लोग होते हैं जो विष्णु को भगवान परम भगवान मानते हैं, कृष्ण और राम को साधारण मनुष्य समझते हैं,
ऐसे होंगे तभी तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे
हैं, एग्जैक्टली
बहुत लोग हैं आचार्य ऐसे, तो बहुत लोग हैं,
यस
पंडित जी भी बड़ा ज्ञान दे रहे थे, वही सही कह रहे थे भगवान जी तो मर गए,
हाँ देखो विष्णु को मानते हैं कृष्ण को नहीं मानते,
कृष्ण मर गए उनको तो मान लगा मर गए,
लेकिन इस प्रकार के
एक ही सवाल किया मैंने, कब रोजी आप किस प्रमाण के आधार पे ये कहे,
वो तो कुछ नहीं पता उनको,
तो बोले कि नहीं मैंने पढ़ा है, मैंने कहाँ पढ़ा है बताओ तो मैं भी सुनूं मेरे काम, तो मैंने कहा देखो अगर उसके बारे में कोई ऑथेंटिक बात कहनी है तो दो ही चीजें याद करो, या तो महाभारत और या श्रीमद् भागवतम, तीसरा कोई ग्रंथ उतना तो ऑथेंटिक नहीं हो सकता। बोले नहीं, मैंने कहा इंटरनेट में पढ़ा है।
जय गूगल देव।
जो लोग पुतला देखते थे।
यस। और ये तीन हुए ना, कौन? पहला मूढ़ा, दूसरा नराधम, तीसरा माया अप्रतिज्ञान है, और चौथा है असुर। असुर 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 का प्रभुपाद जी असुर में कहते हैं, सच पर्सन हुज वेरी प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इज टू डिक्राय द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। वो भगवान के नाम से ही बस, जैसे जरासंध, जरासंध इज एन एग्जाम्पल। जरासंध को कैसा था? कृष्ण का नाम पड़ता ही बस आग बबूला हो जाता। इसको असुर बोलते हैं, हिरण्यकशिपु। तो ये असुर है, असुरिम भाव माश्रित। और इसके अलावा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मायावादियों को असुर बोलते हैं, कि जो भगवान के निराकार स्वरूप को मानते हैं और भगवान के स्वरूप में माया का आरोप लगाते हैं, वो असुरिम भाव मासित, वो असुर है। असुर उसका भी असुर का वध होना चाहिए आइडियली। तो उनका, उनको वध करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान आराम से उसका वध कर सकते। तो ये चार प्रकार के लोग भगवान कहते हैं मेरी शरण में नहीं आते। तात्पर्य में प्रभुपाद जी सबका उदाहरण भी देते हैं। एक में जैसे साइंटिस्टों का दिया, फिर नराधमों में शायद पॉलिटिकल लीडर्स का भी दिया है, फिर काम करने वाले जो लोग हैं, मूढ़ा फैक्ट्रीज में दिन रात नौकरी करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और आसुरी प्रकृति के लोग, जो लोग भगवान के अस्तित्व से घृणा करते हैं, भगवान से घृणा करने वाले लोग हैं। तो यस, एथिस्ट,
भगवान के विरोधी,
विरोधी, यस, इस प्रकार के
नास्तिक। तो नास्तिक से ये विरोधी,
जो घृणा करते, घृणा भगवान से घृणा करते हैं, भगवान को नहीं मानते, वो तो है ही, लेकिन वो उससे आगे बढ़ते हुए लिटिल मोर
विरोधी
है। हाँ, अगर ही इज नॉट डिफेंड, अगर वो भगवान के विषय में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता तो स्टिल नॉट बैड, आई मीन इट्स नॉट दैट बैड। लेकिन अगर जो विरोधी भी है और भगवान का निंदा भी करता है, ही इज असुर, वो असुर है। सो ये चार प्रकार के लोग नहीं आते, और चार प्रकार के लोग शरण में आते हैं। तो वो चार प्रकार के लोग कौन है बताइए?
हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अतार्थी तथा ज्ञानी।
हाँ, चार प्रकार के लोग मेरे सेवा, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुना। चार सुकृति है, जैसे चार सुकृति में था, ऐसे चार सुकृति नो अर्जुना। आर्थ अर्थात दुखी, आर्थ अर्थात अर्थ जिज्ञासु, जिज्ञासु के जो जिज्ञासा करता है, चेक भगवान कौन है, सृष्टि कैसे चल रही है, और ये इतना परफेक्टली कैसे काम कर रहा है सारा सिस्टम, जिज्ञासु। अर्थार्थी, अर्थार्थी शब्द का उपयोग हुआ है धन की इच्छा वाला, लेकिन हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि एक्सटेंडेड धन या सब प्रकार की भौतिक इच्छा, सब प्रकार के, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो करके दीजिए, सब प्रकार के, सब सब सब, क्या बोलते हैं उसको, धनम देही रूपम देही जो भी देही देही वरम देही रूपवती भार्या देही सब। हाँ, तो ये सारे इस वर्ग में आते, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो ये चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, भगवान यहाँ पर कहते हैं दे आर गुड पीपल इन अ वे, वो अच्छे लोग हैं, क्योंकि इन लोगों को अगर भगवान के भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए तो ये लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, ये पॉसिबल है। ये चार प्रकार का सुकृति है, ये लोग आगे बढ़ सकते हैं अगर उनको शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो तो। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुख में, क्या होता है कई बार मंदिर में आप लोग आते हैं तो कई बार आप देखते हो हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, रो रहा है, सिर पटक रहा है, प्रार्थना कर रहा है, दुख में है। कुंती महारानी भी बोलते हैं कि दुख में भगवान तुरंत याद आते हैं। तो दुख का एग्जांपल दिया गया है, अनेक एग्जांपल है, लेकिन एक एग्जांपल है गजेंद्र का। जब गजेंद्र को कष्ट था तो उसने हाथी, अब जानते हो शायद कथा, तो गजेंद्र का हाथी कष्ट में था तो उसने एक पुष्प उठा करके भगवान को प्रणाम किया, याद किया था दुख में। तो ये लोग जनरली भगवान के शरण में जाते हैं। फिर दूसरा होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु वो लोग चेक करते रहते हैं, उनकी जिज्ञासा बहुत इंक्विजिटिव होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन में होते हैं। उसका उदाहरण होता है शौनक ऋषि, शौनक आदि ऋषि, अर्थात बहुत सारे ऋषि मुनि थे जिन लोगों ने सुत गोस्वामी से प्रश्न किए थे और जिसके परिणाम स्वरूप श्रीमद भागवतम हम सुन रहे हैं। जिज्ञासु थे, उनको जानना चाहते थे वो। फिर अर्थार्थी, अर्थात जिनको धन, पत्नी, पुत्र इत्यादि की आवश्यकता होती हो, उनको इच्छा होती हो इन सब की। तो अर्थार्थी के विषय में एग्जांपल दिया गया है ध्रुव महाराज का, जिन्होंने अपने पिता से भी अच्छा साम्राज्य प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी भगवान की। अर्थार्थी जिनको किसी भौतिक कामना है इसलिए। और ज्ञानी के विषय में एग्जांपल दिया जाता है सुखदेव गोस्वामी का, चार कुमारों का, क्योंकि ये लोग मुक्तात्मा थे, इन लोग को किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, ये स्वयं संतुष्ट थे, फिर भी भगवान की शरण में आए थे। तो ये चार प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं। एक रूप से देखो तो ऊपर के जो तीन जो थे ज्ञानी के अलावा, ये तीन लोग जो होते हैं ये लोग सकाम कर्म से मिश्रित होते है, इच्छाओं से मिश्रित है, इसलिए उनको सकाम भक्त बोलते हैं। कुछ न कुछ इच्छा है उनकी, किसी को जिज्ञासा है, किसी को अर्थ की इच्छा है, किसी को दुख कष्ट दूर करने की इच्छा है। तो इच्छा के मिश्रित होने के कारण इनको मिश्र भक्त बोलते हैं सबको, इन लोगों को अलग अलग प्रकार, ज्ञान मिश्र भक्त, कर्म मिश्र भक्त, यू नो, इस तरह से योग मिश्र भक्त आगे आता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के ये मिश्र लोग होते हैं। लेकिन इसमें भी ऐसा बताया गया है कि जनरली दुखी और धन की इच्छा करने वाले जो है वो लोग आगे जाके जिज्ञासु बनने चाहिए। अगर जिज्ञासु नहीं बनते तो वो लोग भगवान की शरण को छोड़ करके जा भी सकते हैं। जिसको कष्ट में है, कष्ट दूर कर दो तो हो गया, तो भगवान का गुड बाय हो जाता है। फिर दुख दूर करने के लिए आया था भगवान के पास, जैसे दुख दूर कर दिया तो फिर वो भूल जाता है भगवान को। जिसको अर्थ की कामना होता है, धन मिलता है, तो भूल जाता है फिर भगवान को। जनरली इस प्रकार से देखा जाता है। तो ये चार प्रकार के लोग भगवान कहते हैं कि ये लोग मेरी शरण में आते हैं, और चार प्रकार के जो लोग है वो मेरी शरण में नहीं आते। और शास्त्र में एक जगह कहा गया है कि सबको मेरी शरण में आना चाहिए। अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदाहर थी, अगर किसी को कोई कामना नहीं है उसको भी मेरी शरण आना चाहिए। सर्व काम, बहुत सारी इच्छा है, भरी पड़ी इच्छा है, अनलिमिटेड डिजायर है, उसको भी मेरे पास आना चाहिए। और उसको मुक्ति कामना है, मोक्ष की कामना है, उसको भी मेरे पास आना चाहिए। तीव्रेण भक्ति योग है ना जजे तब पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग से उसको मेरी शरण में आना चाहिए। This way, these are the four, those who surrender and four, those who don't surrender. So I was thinking that we can have a little exercise. Small, yeah.
Four stages, fear, desire, then service, and then prem. So how do we correlate this with this?
Yeah. भय से
भय, फिर मतलब भय से हम
कर्तव्य से
की शरण में जाते हैं, फिर उसके ऊपर इच्छाओं के साथ भगवान की शरण में जाते हैं।
श्रीमद् भागवत में ये श्लोक, इसमें कुछ भय से आते हैं, कुछ दूसरा कौन सा था आपने बताया, इच्छा, हाँ इच्छा पूरी करने के लिए, कुछ कर्तव्य के कारण, हाँ ड्यूटी है, कर्तव्य, कर्तव्य भाव से, और तीसरा प्रेम के भाव से। तो ऐसे अगर चारों को, एक्चुअली इसके साथ इसका कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये चारों लोग भगवान श्रीमद् भागवत में बताया कि कुछ लोग भय से आते हैं, जैसे कंस वो भय से आया था, फिर हाँ हिरण्यकश्यप वो तो शरणागत था ही, हाँ ठीक है, उसको ये सेवंथ कंटो में आता है ये श्लोक, जीवा पर भय, प्रेम में गोपिया, कंस में भय से कंस, फिर दूसरा इच्छा हो तो वो भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए, नहीं भयात कंस, इस तरह का एक श्लोक है। तो इस प्रकार से चार प्रकार के जो लोग हैं वो शरण में आते हैं, वो एडवांस लेवल के ही है, यहाँ तो भगवान बेसिक चार प्रकार के लोग बता रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में चार चीज अलग अलग से बताई है। वी कैन ट्राई टू रिसर्च ऑन दैट, मे बी इसके साथ कोरिलेशन हो सकता हो, क्या है वो, हाँ भयात लोभात, लोभ से
वो भी
हाँ अर्थ में आता है ना, वो दुखी, क्या बोलते हैं उसको, भयात लोभात,
भयात कौन सो, आप जो बोलो गोपयात कामात,
हाँ गोपयात कामात,
7131
भयात कंस, गोपयात कामात, फिर और एक और भी दो है, यू गेटिंग इट,
गोप्य कामात भयात कंसो वेशश्च
चैद्याद शिशुपाल,
संबंधात वृष्णया स्नेहात
भक्त्या
वयम विभो, गोपीज बाय देयर लस्टी डिजायर्स, कंस बाय हिज फियर, शिशुपाल एंड अदर किंग्स बाय एनवी, यदुस बाय देयर फैमिली रिलेशनशिप विद कृष्णा, यू पांडवास बाय योर ग्रेट अफेक्शन फॉर कृष्णा, एंड वी द जनरल डिवोटीज बाय योर डिवोशनल सर्विस हैव ऑब्टेन्ड द मर्सी ऑफ कृष्णा।
या दिस इज इवन डिफरेंट, कामात द्वेषात भयात क्रोधात, इस तरह से है। सो वी कैन हैव अ स्मॉल एक्सरसाइज, सो कैन वी हैव वन पीस ऑफ पेपर, इस चार प्रकार के लोगों के बाद भी आगे भगवान कहते हैं उनके विषय में कि चार में से सबसे उत्तम कौन है, दैट ही सेज,
पढ़िए, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है।
हाँ, कि जो इस प्रकार का ज्ञानी है, तभी यहाँ पर ज्ञानी का अर्थ ये नहीं होता है कि जो निराकार में विलीन होना चाहता है, वो ज्ञानी की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ पर शरणागति की जो भगवान इस भक्त की बात कर रहे हैं ज्ञानी की, वो जो ज्ञान के लिए भक्ति का त्याग करता है वो गलत है, यहाँ पर जो भगवान बोल रहे हैं वो भक्ति के लिए ज्ञान का त्याग करने वाला भक्त है, वो सबसे श्रेष्ठ है और वो मुझे प्रिय है, भगवान बोलते हैं कि इज डियर टू मी, वो मुझे प्रिय है, वन इज फुल नॉलेज ऑलवेज एंगेज इन प्योर डिवोशनल सर्विस, यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है, जो प्योर डिवोशनल सर्विस, जो मेरी शरण, मेरी शुद्ध भक्ति में जुड़ा हुआ है, अर्थात वो सकाम नहीं है, वो कामना उसके पास इच्छा नहीं है, वो शुद्ध है, मेरा भक्त है। तो यहाँ पर जो ज्ञानी आगे था ना पहले, वो ज्ञानी की चर्चा भगवान आने वाले श्लोकों में करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर तो बता रहे कि सभी शरणागतियों में जो शुद्ध भक्त है वो श्रेष्ठ है, मैं उसको प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है, भगवान ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता रहे हैं। और इसका मुख्य जो क्वालिटी है वो है एक भक्ति, एक भक्ति शब्द का उपयोग हुआ इस श्लोक में, एक भक्ति अर्थात उसको भक्ति के अतिरिक्त और किसी मार्ग में किसी चीज में कोई रुचि नहीं है, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। तो भगवान कहते हैं कि वो मुझे प्रिय है और मैं उसको प्रिय हूं। तो ये सोच करके आगे के जो चार थे, एक तो पहले चार तो आते ही नहीं है शरण में, दूसरे चार जो है उसमें से भी तीन जो है वो अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आते हैं। एक ज्ञानी भी होता है, वो भी मोक्ष की कामना करता है, लेकिन यहाँ पर भगवान बताया कि जो शुद्ध है वो सब वो सबसे प्रिय है, अर्थात एक मिनट यहाँ पर ट्रांसलेशन में लिखा है, ऑलवेज एंगेज प्योर योर सर्विस इज डियर टू मी। तो आचार्य लोग ऐसा बताते हैं कि भक्ति का अर्थ ही होता है भगवान को प्रसन्न करना, जिसमें और कोई इच्छा नहीं होती, और कोई उद्देश्य नहीं होता, और कोई इच्छा नहीं होती उसके अंदर। जैसे वो उसमें था कि मुझे अर्थ दुखी दुख से मुक्त कीजिए, मुझे इससे अलग अलग इच्छाएं जो थी, और इसमें भी इच्छा होती है, लेकिन एक ही इच्छा होती है, क्या? भगवान को प्रसन्न करना, और कोई इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं है। तो फिर बाकी के जो थे चार, आगे तीन जो थे, या चार ही गिन सकते हो आप, बाकी के जो चार थे, क्या ये लोग का कोई वैल्यू नहीं है? भगवान बोलते कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैल्यू तो है उनका भी। तुरंत बोल पड़े भगवान, 18 टेक्स्ट नंबर 18 में भगवान स्पष्ट बताते हैं, पढ़िए।
निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसमें अपने ही समान मानता हूँ, वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे उच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है।
यस, भगवान कहते हैं कि ये उदार, ये तीन बाकी के जो तीन है वो लोग भी उदार है, दे आर बेटर पीपल, दे आर गुड पीपल, उदार सर्वे है भाई, उदार है वो लोग, लेकिन इसलिए मैं उनका तिरस्कार नहीं करता और वो मुझे प्रिय नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो मेरे प्रसन्नता के लिए अपना कुछ भी त्याग करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, तो मैं उनको मुझे संतुष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं ना, जब उनका कुछ चाहिए तो मुझे संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, तो संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, इसलिए मैं उनके प्रति कृपालु होता हूँ, अफेक्शनेट। लेकिन इन सब में भी ज्ञानी जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वो कुछ कामना नहीं करता, निष्काम भाव से मेरे पास आता है, तो इसलिए भगवान कहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। जैसे उदाहरण के रूप में उद्धव जो थे वो बिना किसी कामना से भगवान की शरण में, गोपियां, उनका कोई इच्छा नहीं, आप उनको पूछो, जब उनको हेडेक वाली आपकी स्टोरी आपने सुनी हुई है, बोले आपको इससे नरक में जाना पड़ेगा, चरण की धूलि अगर लगाओगे भगवान के सिर पे, हाँ तो भले भले जाए, लेकिन नरक में जाएंगे तो इतना महान महान गोपियां आप नरक में चली जाओगी, तो हमें इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परवाह नहीं है, इसको बोलते निष्काम। भगवान का भक्त को कोई कामना नहीं, कुछ चाहिए नहीं उसको, डज नॉट वॉन्ट एनीथिंग, ये उसका स्पेशल क्वालिटी है भगवान के भक्त का। अभी फिर ये समाधान के बाद ज्ञानी का महिमा बता दिया कि ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, तभी ज्ञानी कितना समय लगाता है भक्ति तक पहुंचने के लिए। अगेन हमने बताया था कि जो भगवान ने चार के बाद जो तुरंत बोला था वो भक्त की बात हो रही थी, इसलिए वो ज्ञानी और भक्त दो अलग अलग है, वो एक नहीं, एक मुक्ति कामी था वो और एक भक्त है निष्काम। तो यहाँ पर अभी तक जो चर्चा हुई वो निष्काम के विषय में थी, लेकिन अभी उस ज्ञानी की बात हो रही है जो चौथा चार नंबर पे था। आप समझे मैं क्या बता रहा हूँ? पहले 15वें श्लोक में चार लोग नहीं आते, 16वें श्लोक में चार लोग जो आते हैं, 17 और 18 में भक्त की बात हुई, शुद्ध भक्त की बात, और अभी 19 में चार प्रकार के में जो ज्ञानी था उसकी बात हो रही है, जो भक्ति के पास है वो पढ़ी थी।
अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वो मुझको समस्त कारणों का कारण मान जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है।
हाँ, ज्ञानी बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान, ऐसा जो ज्ञानी होता है वो भक्ति तक आने के लिए उसको अनेक जन्म लग जाते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और फिर समझता है वासुदेव सर्वम, कृष्ण ही सब कुछ है, वासुदेव सर्वमिति, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ। तो इसलिए यहाँ पर शुद्ध भक्ति की दुर्लभता के विषय में यहाँ पर बल दिया गया है, क्योंकि ज्ञानियों को भी भक्ति प्राप्त नहीं होती। ऐसे शास्त्र में कहा गया है कि अभी कुछ समय पहले मैं पढ़ रहा था, अनेक अनेक कोटि कर्म कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, करोड़ों कर्मियों के बीच में एक ज्ञानी श्रेष्ठ, और कोटि ज्ञानी मध्य एक जीवन मुक्त, अनेक अनेक करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में एक जीवन मुक्त हो सकता है, और ऐसे कोटि मुक्त गणे कोटि करोड़ों करोड़ों मुक्त लोगों में दुर्लभ कृष्ण भक्त है ना, एक कृष्ण भक्त दुर्लभ है, ऐसा चैतन्य चरितार्थ बताते हैं। कोटि करोड़ एक अगर कोटि करोड़ों करोड़ों कर्मियों में एक ज्ञानी श्रेष्ठ, ऐसे करोड़ों ज्ञानियों में एक जीवन मुक्त सफल होता है, ऐसे करोड़ों जीवन मुक्त में एक दुर्लभ भक्त।
तो खाली
हाँ, तो ऐसा ही पृथ्वी खाली है, लेकिन पृथ्वी में करोड़ों है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में तो बहुत करोड़ों करोड़ों जीवात्मा है, अनगिनत जीवात्मा है। तो ऐसे दुर्लभ कृष्ण भक्त, और आप सोचिए आपको ये सबके बाईपास प्राप्त हुए, कर्मियों का बाईपास मिला है, ज्ञानी का बाईपास मिला है, आप सीधा भक्ति के मार्ग में लग गए। और अभी भक्ति की मार्ग में जितनी भी हमारी साधन भक्ति में जिस प्रकार से हम हमारी रुचि बढ़ाते हैं हमारी प्रगति होगी, उस प्रकार से ये श्लोक को हम सार्थक कर पाएंगे, वासुदेव सर्वमिति सर्व महात्मा सुदोलो। तो ऐसे भगवान को जानने वाले लोग बहुत दुर्लभ होते हैं, ऐसा इस अध्याय में 3 बार बताया गया है, 7वें अध्याय में, जिसमें से ये दूसरी बार हुआ, आगे का गया मनुष्य नाम सहस्रेशु,
3 बार कहने से सर्टिफाई हो गया।
अच्छा है ना, आप समझ लिए ना, पहले का गया मनुष्य हजारों में से कोई एक आता है, यहाँ पर बता दिया बहु नाम जाना, अभी एक तीसरा इसके बाद आएगा कुछ 2-4 श्लोकों के बाद। तो इस तरह से दुर्लभ भक्त यहां पर ज्ञानवान शब्द को लेकर के एक बात ये भी है, ज्ञानवान का अर्थ ये होता है कि जो पूर्ण समझता है कि जन्म कर्म दिव्य है, ज्ञानवान का अर्थ ये होता है कि जो वासुदेव समात्मा सुद्र बता क्या था तत्वतः जो जानाति तत्वतः, हाँ जन्म कर्म तत्वतः, फिर भगवान ने कहा कि ज्ञानम च सभी ज्ञानम, ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम, सेकंड है ना इसका,
इदम मोक्ष
इसमें सेकंड सेकंड श्लोक है ना इसका, 7.2। तो भगवान बता दे कि ज्ञान और विज्ञान के साथ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उसमें हमने क्या चर्चा किया था, ज्ञान और विज्ञान का अर्थ होता है भगवान को उनकी सारी शक्तियों के सहित समझना, इसको तत्वतः माना जाता है। भगवान को उनकी सारी पराशक्ति पराशक्ति इन सभी शक्तियों के साथ समझना, इसको पूर्ण ज्ञान बोलते हैं। जिसमें बहिरंग शक्ति का भी बात हुआ और अंतरंग शक्ति का भी बात हुआ। तो इन सभी शक्तियों के साथ जो समझते हैं वो ज्ञानवान माम प्रपद्यते बहुनाम जन्म नाम अंत, ज्ञानवान माम प्रपद्यते प्रपद्यते शरणागत होता है मेरे शरण, फिर मेरी भक्ति में जुड़ जाता है वो। तो इसलिए इसका चाबी क्या है, कैसे हो सकता है, तभी हो सकता है जब आप भक्तों की संगति कर सकते हो, नहीं तो अपने आप से हो ही नहीं सकता है। माया मुग्ध जीवे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, माया मुग्ध जीव के हो स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं है। जीवेर कृपा केला कृष्ण वेद पुराण समथिंग लाइक दैट। सो माया बद्ध जीव है, जो माया से ग्रस्त जीव उसको स्वतः कृष्ण, इसके लिए उसको भगवान के भक्त की सहायता की आवश्यकता है, संग करना पड़ता है। जब तक आप संग नहीं करते, संग एसोसिएशन इज द की टू एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट इज नो अदर वे। भगवान के भक्तों की संगति के बिना आप भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते, भक्ति प्राप्त ही नहीं हो सकती। और जब कभी आपको ऐसा अवसर मिले कि आपको भक्तों की संगति करने से रुचि नहीं हो रही है, अरुचि हो रही है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो समझ लेना कि आपने वैष्णव का अपराध किया है, या आपने कहीं पर भगवान के चरणों में अपराध किया है। इसका परिणाम है कि आपको संगति का आकर्षण चला गया, आप संगति नहीं, अब मुझे कोई इच्छा नहीं भक्त, या वो ऐसा मानने लगता है वो भक्त कि अब मुझे बहुत कुछ आ गया, अब यहाँ पर ऐसा कोई भी है नहीं कि जो सुखदेव गोस्वामी बनकर के मेरी इच्छा मेरी सारी जिज्ञासा पूरी कर सके, इसलिए अब मैं जानना था वो सब जान लिया। एक भी भक्त ऐसा नहीं है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अगर कोई भक्त ये मानता है कि तुम मुझे क्या सिखाओगे, ठीक है अभी तुम सिखाओगे नहीं, लेकिन कम से कम कृष्ण कथा तो कर सकते हो ना, उसके लिए सीखने नहीं सीखने की क्या बात है। भगवान के बीच आप भगवान की बात तो आपस में कर सकते हो, तो कृष्ण कथा करने से क्यों मुंह मोड़ना, क्यों उन्हीं व्यक्तियों के पास जाना हमेशा कि जो लोग आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हो, क्यों हमेशा उनके पास ही जाना चाहिए। ऐसे लोग के पास अधिक जाना चाहिए जिनके सामने हमें हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़े, तभी तो सीख पाएंगे ना कोई। तो भक्तों की संगति इसका मूल चाबी है, इसका की है। सभी भगवान आने वाले तीन श्लोकों में ये चीज बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग ना तो उसमें आते हैं चार प्रकार के दुष्कृत देने में, और ना आते हैं चार प्रकार के सुकृत दिनों में, वो शरणागत होते हैं, दुष्कृत तो नहीं है क्योंकि वो शरणागत होते हैं, चार तो दुष्कृत में वो तो नहीं आएंगे, लेकिन शरणागत मुझे नहीं होते, वो चार तो मेरे शरणागत होते हैं लेकिन ये लोग मेरे शरणागत नहीं होते, इसलिए इसको अलग कैटेगरी बनाना पड़ा। तो वो कौन सा कैटेगरी है पड़ी है,
भौतिक इच्छाओं द्वारा हराई गई छे તેઓ દેવોના શરણે જાય છે અને તેઓ પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે પૂજાના વિશિષ્ટ વિધિ વિધાનોને અનુસરે છે.
યસ, તો યહાં પર પ્રભાત કહેતે હૈ, તાત્પર્ય મેં એક દો લાઇન મેં પઢ રહા હું, લેસ ઇન્ટેલિજન્ટ પીપલ હુ હેવ લોસ્ટ ધેર સ્પિરિચ્યુઅલ સેન્સ ટેક શેલ્ટર ઓફ ડેમીગોડ્સ ફોર ઇમિડિયેટ ફુલફિલમેન્ટ ઓફ મટીરિયલ ડિઝાયર્સ. જનરલી સચ પીપલ ડુ નોટ ગો ટુ ધ સુપ્રીમ પર્સન ઓફ ગોડ હેડ બીકોઝ they are in the lower modes of nature, ignorance or passion, and therefore worship various demigods. क्योंकि उनको बहुत ही इच्छाओं की कामना है, इसलिए वो अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं। वो सत्वगुणी नहीं है, रजोगुणी तमोगुणी अधिकतर होते हैं, और इनको बहुत ही जल्दी चाहिए सब कुछ, इंस्टेंट, कि अभी कुछ करो, अभी चाहिए सब कुछ। तो इस प्रकार के लोग देवताओं की शरण में जाते हैं, दोज हूज इंटेलिजेंस हैव बीन स्टोलन। स्टोलन का क्या ये श्लोक क्या है? कामनाओं से जिनका जो बुद्धि है वो हर लिया गया है, कामस्थ ऋतक ज्ञान। तो ये लोग तो ऋतक ज्ञान तो है ही, कामनाओं के कारण उनका निकल गया है बुद्धि, इसलिए कम बुद्धिशाली है, दुर्भागी भी है। दो चीज यहाँ पर है, अभी भगवान इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि वो कम बुद्धिशाली कैसे है। यहाँ पर तो बता दिया कि कम बुद्धिशाली है, तो कोई कह सकता है ना कि ऐसे ही बोल दिया सीधा, कम बुद्धिशाली ऐसा कैसे बोल सकते आप, क्योंकि तुम्हारे शरण में नहीं आता इसलिए, तो तुम पक्षपात करोगे? ना ना, पक्षपात तो करते नहीं भगवान। तो ये लोग ऐसा सोचते हैं कि कृष्णा हमारी इच्छा पूरी नहीं कराएंगे। भूतकाल में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं ऐसे कि कृष्ण के पास कोई गया मांगने के लिए, कृष्ण ने उसकी इच्छा पूरी नहीं की। जैसे कृष्ण क्या करते हैं कि वो बहुत शुद्ध करवाते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं इच्छा पूरी करने के लिए, टाइम ज्यादा ले लेते भगवान। तो जनरली ये लोग को क्या होता है कि सब कुछ इमीडिएट चाहिए। भगवान ऐसे भी कहते हैं कि यही मूर्खे आमी विज्ञा यही मूर्खे विषय कहने दिबो, स्वचरणामृत पिलाएबो विषय भुलाएबो। भगवान कहते हैं कि मैं तो बुद्धिशाली हूं, ये मूर्ख है मेरी शरण में आ रहा है जो मांग रहा है भौतिक चीज, मैं तो मूर्ख नहीं हूं ना, वो मूर्ख है जो मांग रहा है कि मुझे ये दो मुझे वो दो, तो मैं क्या करूंगा, आ बेटा मेरी शरण में आ, तो मेरी पूजा कर, सेवा कर, सब प्रकार के विनय कर, और रो रो करके विनती कर करके प्रार्थना करता है, प्लीज कृष्ण प्लीज ये कर दीजिए मेरा, इतना कर दो इतना कर दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, उसको अपना चरणामृत पिला दूंगा, ले पी अपना निजी चरणामृत, मेरे चरण का पानी पिला दूंगा, इससे क्या होगा उसका विषय ही वो भूल जाएगा, उसकी इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। अच्छी चीज मांगो, ये क्या मांग रहा है, मैं अच्छी चीज दे रहा हूँ, भूल जाएगा तू। वो ऐसे मांग रहे कांच के टुकड़े, सुन रहे कांच का टुकड़े ढूंढ रहे, भगवान ने उसको हीरा पकड़ा दिया, ले तो हीरा को पकड़ने के लिए कांच के टुकड़े फेंक दिए, हीरा पकड़े तो हो गया, वो छोटा छोटा खिलौना मांग रहा था, वो भगवान ने उसको आइसक्रीम ही दे दिया। जनरली क्या होता है कि जैसे ध्रुव महाराज के विषय में ये है, काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, सुना है दैट? स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोऽहम् त्वां प्राप्तवान् देव मुनिन्द्र गुह्यम्। ध्रुव महाराज कहते हैं ये श्लोक प्रार्थना में, वो कहते हैं कि स्थानाभिलाषी, मुझे तो कुछ प्राप्ति चाहिए थी, भौतिक इच्छा थी मेरी कि ऐसा महान कोई चीज चाहिए। स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थितोऽहम्, मैं तपस्या करने लगा था बड़े साम्राज्य के लिए, तपस्वी स्थितोऽहम् त्वान् प्राप्तवान्, आपको प्राप्त कर लिया, देव मुनिन्द्र गुह्यम्, देवों को भी नहीं मिलते ऐसे, ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं होते ऐसे, भगवान को मैंने प्राप्त किया, देव मुनिन्द्र गुह्यम्। काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम्, मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढने निकला था, मुझे हीरा मिल गया, स्वामी कृतार्थोऽस्मि नवरम नया छे, हे कृष्णा अब मैं कृतार्थ हो गया, अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, हे मेरे स्वामी। ये ध्रुव महाराज का ये प्रसिद्ध श्लोक है। तो हम लोग भौतिक इच्छा प्रयास करते रहते हैं प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान सोचते हैं कि तुम जो मांग रहे हो उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत बड़ी चीज देना चाहता हूं, बहुत बड़ी चीज, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये मुझे ये चाहिए, आप कृष्ण आप क्यों मुझे तड़पा रहे हो, मुझे ये चाहिए कृष्ण, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे, नहीं देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, आप करते रहो प्रयास, करते रहो प्रयास, नहीं देंगे आपको। अरे भाई मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चीज देने वाला हूँ, बट यू हैव टू वेट फॉर इट। ये है कृष्ण का तरीका। वो कोई इसलिए भक्त जो होता है वो कंप्लेन नहीं करता भगवान मुझे दुखी क्यों बनाया। अरे भाई तुम्हें दुखी नहीं कर रहे, वो तुम्हें दुखी नहीं कर रहे, उनका इच्छा ही नहीं है तुम्हें दुखी करने का, तुम्हारी इच्छा नहीं पूरी करते, ऐसा कुछ है ही नहीं। उनको क्या पड़ी है तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करने से, क्या मिलेगा उनको, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो तुम्हें अच्छी चीज देना चाहते हैं, ये हल्की चीज सस्ती चीज नहीं देना चाहते। कोई वो बोले वो ये प्लास्टिक का एक घर दिखा दो, कोई बोलता एक छोटा सा, तो कोई बच्चा रोता है प्लास्टिक का एक गाड़ी लेने के लिए, वो बाप सोचता है बेटा मैं तुझे अच्छी नई गाड़ी दूंगा, असली वाली गाड़ी, ये नकली गाड़ी के लिए क्यों रो रहा है तू। वो ऐसा सोचे बाप मेरी इच्छा पूरी नहीं करते, कैसा बाप है ये, इतना मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गिर गिरा रहा हूँ, पटक रहा हूँ, सिर मन्नते मान रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कृष्ण मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। दिस इज द वे ऑफ कृष्ण। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को कहा कि हे प्रभु आप तो हमारे सगे और रिश्तेदार, आप मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। हाँ भगवान बोला, बोलो कौन सी इच्छा है, सब पूरी करें। बोले मुझे बहुत विशाल साम्राज्य दीजिए, बहुत धन दीजिए, सारे शत्रु मेरे मर जाए, ऐसा सब मांगने लगे। तो कुछ लोग सोचने लगे अरे युधिष्ठिर महाराज ये तो कर्मियों की भांति मांग रहा है, ये तो कर्मी जैसे मांग रहा है, इस तरह से मांग रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हाँ मैं कर्मियों की भांति मांग रहा हूँ, इसलिए मांग रहा हूँ ताकि मैं सबको बताऊं कि अगर तुम्हारे पास ऐसी इच्छा भी है तो भी कृष्ण के पास ही आना और कहीं मत जाना, देवताओं के पास मत जाना, क्योंकि देवता जो दे रहे हैं वो तो अंत में मैं ही दे रहा हूं। भगवान बताते हैं आगे वाले श्लोक में पढ़िए।
मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके।
हाँ ये भगवान तो सबके हृदय में बैठे सब जानते हैं, वो जैसे ही पता पड़ता है कि इसको तो ना दुष्कृत में बनना है ना मेरी शरण में आना है, किसके पास जाना है, शॉर्टकट चाहिए अंडर द टेबल है ना, इसको शॉर्टकट चाहिए। तो इस प्रकार से अगर कुछ चाहिए तो फिर भगवान उसकी हृदय उसकी भावना समझ लेते किसके मन में क्या चल रहा है, तो उसको बुद्धि देते जा इस मंदिर से माथा टिकाने से कुछ नहीं होने वाला, तू जा पैदल चलकर उधर तभी तेरा कल्याण हो सकता है, जा तो उधर ये मन्नत लगा तो भगवान उसकी सहायता करते हैं। अभी कोई ये प्रश्न पूछे भगवान ऐसी सहायता क्यों करते हैं फिर भगवान अभी तो हम बात कर रहे थे मैं मूर्ख हूँ, मैं भगवान मूर्ख नहीं है मैं मूर्ख हूँ, अभी बात कर रहे थे, लेकिन वो किन लोगों के लिए था, जो लोग भगवान की शरण में आते हैं उन लोग, जो शरण में नहीं आते उन लोग को भगवान हेल्प करते, ओके तुम देवताओं के पास जाओ, अच्छा है ना झंझट छूटे जाओ भाई, तो देवी गौर के पास, मेरे पास आएगा नहीं। लेकिन भगवान दयालु है। एक चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि ये लोग देवताओं की उपासना करते हैं और देवता लोग भक्तों की उपासना करते हैं, इन लोग के लिए देवता पूजनीय है और देवताओं के लिए भगवान के भक्त पूजनीय है। सोचिए जो डायरेक्ट भगवान के शरण में आता है वो लोग की पूजा देवता लोग भी करना चाहते और ये लोग देवताओं के पास जाते, भगवान के पास तो नहीं जाते, भक्त के पास भी नहीं जाते और देवताओं के पास जाते। इस प्रकार की और फिर टेक्स्ट नंबर 22 में फिर भगवान बताते हैं कि वो मैं ही देता हूँ फल। पढ़िए।
ऐसी श्रद्धा से सम्मिलित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है।
अरे मैं ही तो देता हूँ लाभ, आता कहाँ से, सारी सृष्टि को मैंने बनाया तो आता कहाँ से, इनके पास देवताओं के पास आया कहाँ से। ये समझ लो कि यहाँ पर रेलवे की टिकट कालूपुर स्टेशन रेलवे स्टेशन राइट, तो वहां पर एक टिकट विंडो है, यहाँ पर भी अलग अलग जगह पर टिकट विंडो है, पहले तो था अभी तो सब जगह आ गया। तो ये लोग आपको टिकट इश्यू करके देते हैं तो क्या इनके घर की टिकट होती है कहीं से भी, तो रेल डिपार्टमेंट की टिकट है ना, तो टिकट तो उधर से ही आती है और इधर से जो पैसा जमा करते हो कहाँ जाता है, वो उनके पास ही ज्यादा है। ये लोग करते क्या, बीच में कुछ करते तो है नहीं, टिकट देते है और कुछ करते नहीं है। लेकिन मूर्ख लोग क्या समझते है यार, मैं रेल डिपार्टमेंट के पास क्यों जाऊं, जब ये बंदा मुझे टिकट दे रहा है तो मैं रेल डिपार्टमेंट से टिकट क्यों लूं। ये देवताओं के पूजकों की बुद्धि है, लेकिन इन लोग को पता नहीं कि ये लोग भी वहीं से लेके आते
हैं।
तो इसलिए भगवान सारे फल भगवान ही देते हैं। देवताओं के विषय में ऐसा कहा जाता है कि देवता लोग एडजस्टमेंट आपको करके दे सकते हैं, ये पावर उनको दिया जाता है एडजस्टमेंट, है ना। जैसे समझ लो कल आपको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं कल, और परसों आपको समझ लो कि कल 1 करोड़ मिलने वाले हैं और आज आपको 50 लाख का नुकसान होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देवताओं के पास जाओ, 50 लाख का नुकसान हो गया, हाय हाय अब मैं क्या करूं। तो फिर भगवान क्या करते हैं, ये कल जो 1 करोड़ मिलने वाला था ना वो आज दे देते हैं, और आज जो 50 लाख का नुकसान होने वाला था वो कल कर देते हैं। वो कल कर देते,
देवता लोग एडजस्टमेंट कर देते
हैं। हाँ वो एडजस्टमेंट कर, हाँ वो एडजस्टमेंट इस तरह से ही होता है। आपको ऐसा लगेगा हाँ देखो कितना अच्छा है, मेरी मानता पूरी भाई, तुम्हें अगले जन्म में नेक्स्ट लाइफ में तुम्हें एक मर्सिडीज मिलने वाली थी, बहुत मन्नतें मांग ली, बहुत माथा पटक लिया, कोई बात नहीं मर्सिडीज इस जन्म में ले जा, अगर अगले जन्म में नहीं मिलेगा। तो इस तरह से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके दे सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। और लोग सोचते हैं हाँ वाह वाह इतना देवताओं की पूजा की, आपका कृष्णा कुछ देते तो है नहीं, और इधर तो देखो लाइन हाँ वो सब ले लेते, देते तो है नहीं,
जो बाद में मिलने वाला उसको पहले
मिलता है, वो उनको नहीं पता है। उनको ऐसा है कि भगवान देवता लोग उनको देते हैं, लेकिन देवता लोग कर्म की गतिविधियों को नष्ट नहीं कर सकते, आपके कर्म का जो हिस्ट्री है उसको साफ नहीं कर सकते, वो लोग एडजस्टमेंट करके दे सकते, वो पावर भगवान के पास है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, भगवान कहते हैं कर्माणि मैं कर्म को नष्ट कर देता हूं। इसलिए अभी आप सोचिए कि कृष्ण की शरण लेने वाले को सनातन धाम प्राप्त होता है, और डेमिगॉड वर्शिपर को यही एडजस्टमेंट प्राप्त होता है। अभी बढ़िए नेक्स्ट श्लोक में 23।
अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं।
हाँ यहाँ पर भगवान ने क्लियर कर दिया कि मैंने उन लोग को बुद्धि स्टोलन अनइंटेलिजेंट कम बुद्धि और दुर्भाग्य क्यों कहा था, दोनों का आंसर यहाँ पर बताया। इसलिए बताया क्योंकि उन लोग के पास जो कुछ आता है वो सब टेम्पररी आता है, इसलिए उनको लेस इंटेलिजेंट बोला जाता है। कि फल मैं देता हूं उसको डेमिगॉड के माध्यम से, और डेमिगॉड की पूजा करना जाता है वो, है ना। अब परिणाम क्या आता है, दुर्भाग्य क्यों है, दुर्भाग्य भी बोला था ना आगे, दुर्भाग्य क्यों है क्योंकि ये लोग देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाते हैं और मेरी पूजा करने वाले मेरे पास आते हैं, इसलिए वो लोग दुर्भाग्य है, क्योंकि उन लोग के पास वही स्थान आता है, वो लोग वहीं पर जाते हैं जो नश्वर है इतनी मेहनत करने के बाद। अभी यहाँ पर इसलिए बताया गया है कि क्यों अलग अलग है। देखो प्रयास तो एक समान लगते हैं दोनों के बीच में, आप इसमें भी प्रयास करो या उसमें भी प्रयास करो, देवताओं को पूजा करो उतना ही प्रयास करके वो भगवान की भी सेवा कर सकता था। दोनों को प्रयास एक जैसे दिखते हैं, भगवान के भक्त और देवताओं के उपासक, लेकिन एक को भगवान का धाम मिलता है वैकुंठ सनातन धाम, और दूसरे को वही आवागमन संसार में घूमना फिरना। तो इसलिए प्रभा इस तात्पर्य में इस चीज को हाईलाइट करते हैं कि ये इज द पॉइंट मे बी रेज दैट इज द डेमिगॉड्स आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, देन सेम एंड शुड बी अचीव्ड बाय वर्शिपिंग देम। अगर देवता सब भगवान के अंग विशेष है तो फिर सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति होना चाहिए ना। अगर सब किसी भी अंग की पूजा करो तो भगवान को ही प्रसन्न होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाउएवर वर्शिपर्स ऑफ द डेमिगॉड्स आर लेस इंटेलिजेंट बिकॉज दे डोंट नो टू व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी फूड मस्ट बी सप्लाइड. इनको पता नहीं है अभी पांव को, पांव की, पांव में अगर आपकी उंगली कमजोर हो गई है तो आप उसको एक एक चम्मच खीर डालते रहोगे उसके ऊपर, है ना, तभी देयर इज लेस इंटेलिजेंट, इसलिए अल्प बुद्धिशाली. उनको पता नहीं खाना किधर जाना चाहिए. सो सम ऑफ देम आर सो फुलिश दैट दे क्लेम दैट देयर आर मेनी पार्ट्स एंड मेनी वेज टू सप्लाई फूड. यह तो मत ततोपथ, जिसको जिसको किसी भी ट्रेन में बैठो दिल्ली जाओगे. ये तो मत तो मत इस प्रकार के, ये इस प्रकार के लोग. कैन एनीवन सप्लाई फूड टू द बॉडी थ्रू ईयर्स और आईज? दे डोंट नो दैट दिस डेमिगॉड्स आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्सल बॉडी द सुप्रीम लॉर्ड एंड इन देयर इग्नोरेंस दे बिलीव दैट ईच एंड एवरी डेमिगॉड इज अ सेपरेट गॉड एंड कंपेटिटर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. ये मूर्ख लोग इससे ऐसा मानते हैं कि जैसे भगवान, जैसे कृष्णा भगवान है वैसे शिवजी भगवान है, जैसे शिवजी भगवान है वैसे गणेश भी भगवान है, वैसे इंद्र भी भगवान है, राम भी है, विष्णु, जिसको मानो. ये लोग ऐसा मानते हैं और यहां तक कि वो लोग कंपेटिटर भी मानते हैं कि दे आर कंपेटिटर टू ईच अदर. किसके किसके यहाँ ज्यादा अनुयायी आते हैं, किसके मंदिर में ज्यादा लोग आते हैं. सो देयर फॉर दे आर फुलिश एंड अनइंटेलिजेंट, दुर्भाग्य. लेकिन ऐसे भी लोग थे जैसे भरत महाराज, वो देवताओं की पूजा करते थे, देवताओं भगवान की प्रतिनिधि के रूप में, तो उनको इसका सही परिणाम प्राप्त हुआ, उनको भगवान की सेवा प्राप्त हुई. तो इसलिए देवताओं की उपासना, जैसे नरसिंह मेहता का उदाहरण भी देते कई बार, शिव जी के पास प्रसन्न हुए, शिव जी को बोला क्या, शिव जी ने कहा क्या मांगना है बोलो, बोला आपको जो सबसे प्रिय है वो मुझे दीजिए. तो उन्होंने कहा कि मुझे तो भगवान की रासलीला प्रिय है, तो बोले मुझे कृष्ण भक्ति दीजिए फिर. तो फिर शिव जी ने उनको वरदान दिया कृष्ण भक्ति का. तो ऐसा उदाहरण भी दिया जाता है. तो ऐसा कई उदाहरण है कि जो देवताओं के पास जाते हैं लेकिन मांगते हैं कृष्ण भक्ति. हालांकि ये सिस्टम के बदले भगवान जो सिस्टम बताया वो ज्यादा अच्छा है कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए. लेकिन इसके अलावा एक श्लोक और ले ले. इसके अलावा ये तो हुआ तीन श्लोकों में डेमिगॉड वाला पार्ट, और एक कैटेगरी भी है. चार वो थी, चार बाद में आई, फिर एक भक्त के विषय में बता दिया, और फिर यहाँ पर देवताओं के सुना, और एक कैटेगरी आती जो देवताओं के शरण में नहीं जाता है, ना दुष्कृति न जैसा है और ना ही सुकृति न जैसा है. कौन सा है वो, नेक्स्ट श्लोक में.
बुद्धि है मनुष्य, मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते है कि पहले निराकार था भगवान, पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है, फिर अपने अल्प ज्ञान के कारण भी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते.
देखो अर्जुन, एक तो दुष्कृतिनो डेफिनेशन था, दूसरा सुकृतिनो का डेफिनेशन था, फिर देवताओं की पूजा करने वाले लोग आदि बुद्धि वाले थे, अल्प बुद्धि वाले थे देवताओं के, और यहाँ पर अबुद्ध है, इनको बुद्धिहीन बोला जाए, इनके पास है ही नहीं बुद्धिहीन, मूर्ख मूर्ख लोग, अनइंटेलिजेंट मैन, दैट वॉज लेस इंटेलिजेंट मैन, अल्प मेधसाम, और यहाँ पर अबुद्ध है. जो लोग ये जानते नहीं है मेरे साकार स्वरूप को, वो लोग ऐसा सोचते हैं, मानते हैं कि मैं पहले निराकार था, फिर साकार हुआ, फिर निराकार हो जाऊंगा. अरे भाई, कृष्ण ने भगवद गीता कहा सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, तो वो शरणम व्रज में का अर्थ होता है कि कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर जो बैठा हुआ है निराकार, उसके शरण में जाने का, उसके शरण में जाने का, ऐसा ऐसा वो लोग बोलते. तो निराकार ब्रह्म आज क्या बोलते हैं, साक्षात चलता फिरता ब्रह्म हुआ है. आज कृष्ण एक ब्रह्म ने एक स्वरूप लिया है, और जैसे क्योंकि उससे स्वरूप लिया इसलिए वो माया में फंस गया, इसलिए गोपियों के चक्कर में फंसा, इसलिए सब ये सब प्रॉब्लम हुआ. लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही कृष्ण को पार्थिव बाण मारेगा तो फिर से निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा। जैसे निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा फिर से वो भगवान बन जाएगा। और इसमें कोई बात नहीं है, वो जो कृष्ण के साथ हुआ था वो मेरे साथ भी ऐसा ही है, तुम्हारे साथ भी ऐसा है। तुम शरीरधारी हो, मैं भी शरीरधारी हूं, इसलिए हम लोग माया के आवरण में है। जिस दिन हम ये शरीर त्याग कर देंगे उस दिन क्या हो जाएगा, तत्वमसी, वो तू है, मैं उसमें मिल जाऊंगा, तुम भी भगवान बन जाओगे। नमो नारायण, तुम भी भगवान, तुम भी नारायण, मैं भी नारायण, सब नारायण, सब भगवान। तो ये भाव अनइंटेलिजेंट, अबुद्ध, और इसका तात्पर्य बहुत सुंदर है टेक्स्ट नंबर 24 का। इसको अबुद्ध, इम्पर्सनल, मायावादी, क्योंकि जनरली भगवान के विषय में मटेरियल लॉजिक काम नहीं करते। ये लोग क्या सोचते हैं कि मैं ये शरीरधारी हूं तो मेरी लिमिटेशंस है, ये शरीर के कुछ लिमिटेशंस है, इसलिए जो कोई भी शरीर दान करता है उसको लिमिटेशन आ जाती है। सबके हमने सब सर्वे किया, सबके पास यही लिमिटेशन जो मेरे पास है। तो इसलिए अगर भगवान भी शरीर धारण करते हैं तो भगवान का शरीर भी लिमिटेड हो जाता है। शरीर उनके लिए भगवान का शरीर और आत्मा अलग है, और शास्त्र कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा शरीर और आत्मा एक है, मेरा सच्चिदानंद विग्रह है, शाश्वत स्वरूप है, मेरा आत्मामय शरीर है। जो आत्मा हमारे अंदर है वो भगवान का पूरा शरीर आत्मा का बना हुआ है, आत्म तत्व से बना हुआ है। तो यहाँ पर भगवान की इस भाव को समझ नहीं पाते, इसलिए माया समझते हैं। 16108 भगवान शरीर लेते तो देखो कैसा लीला प्रस्तुत की। नारद मुनि चेक करने गए थे भगवान को कि द्वारका में तो शादी है भगवान का, तो देखते जाने दे। 16000 है, तो कोई कह सकता है कि 16000 तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, हम भी कर सकते 16000 शादी, आज इससे शादी किया, कल उससे शादी किया, परसों से शादी किया, ऐसा 16000 शादी हो जाएगी, उसमें क्या है। ऐसा था एक राजा साउथ इंडिया, पता है 350 शादी की थी उसने, 350। तो ऐसा वो भी ट्राई करता था ऐसे कि वो अधिक से अधिक पत्नी इकट्ठा करे। तो 16000 शादी, लेकिन एक अलग अलग समय पे, फिर भगवान वो कोई कहेगा कि नहीं नहीं भगवान ने तो एक ही साथ 16000 से शादी की, ठीक है। तो हो सकता है, वो भी हो सकता है, कैसे एक बड़े हॉल में 16000 ब्राइड्स को बिठा दो और फिर एक के साथ सबके साथ 16000 के साथ शादी हो जाएगी एक साथ। लेकिन यहाँ पर भगवान ने 16000 अलग अलग स्वरूप लिए, सबके साथ एक एक स्वरूप, फिर शादी की, और सबको एक एक महल भी दिया। अब बताओ 16000 अलग अलग महल भी दिया, और सारे महल में अलग अलग एक्टिविटी, कभी कृष्ण दान दे रहे, कभी स्नान कर रहे, कभी पूजा कर रहे, कभी ध्यान कर रहे, कभी बच्चों के साथ खेल रहे, कभी पत्नी के साथ बैठे हुए, ऐसे सब कमरे में, सब महल में अलग 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 कृष्ण एक्टिविटीज कर रहे थे। और नारद मुनि देख रहे थे, हो क्या रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। कोई महायोगी होता है वो भी अधिक से अधिक कितना, क्या 9 या 10 न 50, 50 हो सकता है मैक्सिमम अलग अलग स्वरूप, 50। सौभरी मुनि ने 50 स्वरूप लिए थे। सौभरी मुनि जो थे उसको 100 थे 50 थे शायद, इट वॉज 50। तो सौभरी मुनि, उनका गरुड़ का अपराध किया तो मांधाता वहां के राजा थे, उससे मथुरा के राजा मांधाता थे, तो मांधाता के पास चले गए और उनका शरीर बिल्कुल क्षीण हो चुका था और उनको कामवश ये भूल ही गए कि मेरा इतना बदसूरत स्वरूप लेकर के राजा के पास गया, बोले मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो राजा सोचे है कौन ये, बोले सोचा सौभरी होनी, अभी इसको मैं ना बोलूंगा तो शाप दे देगा, इसको ना तो बोल नहीं सकते और हाँ बोल नहीं सकते, हाँ बोलूंगे मेरी बच्चों बेटियों का क्या, हाँ नहीं बोल सकते। तो मांधाता ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अगर उनसे शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर मेरी बेटियां आपको पसंद करे तो आप उनसे शादी कर सकते हो। तो सौभरी मुनि समझ गए अच्छा मैं बदसूरत हूँ इसलिए, तो बोले कोई बात नहीं, अपनी योग शक्ति से उसने सुंदर स्वरूप ले लिया, अब बताओ लाओ तुम्हारी राजकुमारी। तो एक से विवाह की बात हो रही थी, यहाँ के सबके सब बोली सब हम सब उनसे शादी करना चाहते, इतना सुंदर है। तो उसने सौभरी मुनि सबसे शादी कर ली, लेकिन अभी प्रॉब्लम हुआ कि वो एक और रानिया अनेक, तभी प्रॉब्लम हो गया कि अब करे क्या, किसके पास जाए, किसको समय दे, किसको टाइम दे। तो उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपना विस्तार किया और सबके साथ एक एक स्वरूप दे दिया योग शक्ति से। लेकिन मैक्सिमम लिमिटेशन के अनुसार योग में जो मूल सौभरी मुनि है वो राइट हैंड उठाएंगे तो सभी अपना राइट हैंड उठाएंगे, क्लोन होता है वो, हंसेगा तो सब हंसेंगे, यू नो। तो अभी ये तो इंजस्टिस होएगा सब रानियों के साथ, तो ये समस्या है। लेकिन भगवान तो 16108 अलग अलग, इसलिए भगवान को अजोपी, उनका कोई जन्म नहीं है, अजोपी अव्यय आत्मा भूता नाम ईश्वर ओपिशन। भगवान कहते हैं ना वो कौन से चौथे अध्याय में था कि मैं संभवामी आत्मा माया, मैं मेरी अपनी माया से मैं प्रकट होता हूँ संभवामी आत्मा माया। इसलिए भगवान इसके बंधन में फंसते नहीं है। एक्चुअली नेक्स्ट टाइम हम एक एक्सरसाइज करेंगे ये मायावादी तत्व ज्ञान को लेकर के, सो वी हैव टू स्टॉप। 24 हुआ ना।